जय माँ। श्री अरविंद के योग का लक्ष्य है नूतन अभिव्यक्ति। नूतन अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, क्या है नूतन, इसके बारे में। नूतन का यहाँ अर्थ फैशन नहीं है। नूतन का अर्थ ये नहीं कि कोई भी नई चीज़ जो हो रही है वो श्री अरविंद की नवीन न्यू कॉन्शियसनेस का है। नूतन का अर्थ ये है कि जो अब तक नहीं हुआ है। तो अब तक क्या नहीं हुआ है, इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, तो अब तक जितनी भी संभावनाएं इस ब्रह्मांड के अंदर उतरी, विश्व के अंदर उतरी, मनुष्य के द्वारा या मनुष्य के पहले अन्य अन्य जीवों के द्वारा जो कुछ उसमें अभिव्यक्त हुआ उनके द्वारा, अब उसमें कुछ और भी नया, तो हम ये कह सकते हैं कि दिव्य की नूतन अभिव्यक्ति। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक अनुभव भी है और उसके आधार पर एक कंसेप्शन है कि जो कुछ संसार में होता है वो भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। तो ऐसा यदि है, सब कुछ भगवान है, तो फिर नया क्या है। कई लोग इस विचारधारा को पकड़ लेते हैं कि ऑल इज गॉड, ऑलरेडी ऑल इज गॉड, ऑल इज डिवाइन। तो इसको हमको ऐसे देखना है कि सब कुछ भगवान है, लेकिन भगवान स्वयं को नए नए रूपों में कालखंड के अंदर, देश और काल की सीमा में अभिव्यक्त करते हैं। उसी को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। ये सच है कि मछली भी भगवान है और उसके बाद वराह, कूर्मा, ये सब भगवान है, भगवान की ही अभिव्यक्ति। और हम लोग ऐसा मानते हैं सनातन धर्म में कि हर चीज़ किसी ना किसी रूप में भगवान की अभिव्यक्ति है। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ मनुष्य के आगे भी जो अब तक अभिव्यक्त नहीं हुई है वो होने वाली है? तो इन द सेंस भगवान स्वयं को ही नए रूप में अभिव्यक्त करते हैं। क्यों वो नए रूप में अभिव्यक्त करते हैं? इसलिए क्योंकि वे अपनी पूर्णता को, पूर्ण दिव्यता को जड़ तत्व के आधार पर अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो अभी तक क्या पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई? नहीं हुई, ये तो बहुत स्पष्ट है। अगर पूर्ण अभिव्यक्ति हो गई होती तो मनुष्य वह नहीं होता जो वो आज है। किसी ने कुछ, शायद कल ही की बात है, किसी ने, कोई पूछ रहे थे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, हाँ, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या डेंजर्स हैं, ये हो रहा है ना आजकल बहुत इसके, तो डेंजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या मनुष्य से है? क्या कोई ऐसा कालखंड रहा जब मनुष्य को या पृथ्वी को मनुष्य से खतरा नहीं था? क्या महाभारत के समय खतरा नहीं था, रामायण के समय खतरा नहीं था? तो खतरा ये नहीं है कि AI जो मनुष्य से निकला, उसका एक अब अलग डिस्कशन हो सकता है। खतरा तो उससे है जिससे AI निकला, वो है मनुष्य। तो मनुष्य से क्यों खतरा है पृथ्वी को और धरती को? क्योंकि मनुष्य अज्ञान में है और अज्ञान में रहने के कारण वो जो नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है जो वास्तव में अंत में उसको ईविल की ओर ले जाती है। तो AI हो या कोई सा भी AI हो, अल्टीमेटली AI इज द प्रॉब्लम। मनुष्य ने कौन से AI को पकड़ करके रखा हुआ है? सो अब ये अगर बैकग्राउंड है तो हमको ये देखना है कि इसका हल क्या है। तो श्री अरविंद जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, सबसे नूतन ओरिजिनल सॉल्यूशन, वो कहते तुम AI होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रेगुलेट करो, नहीं रेगुलेट करो, ये सब चीजें मनुष्य करते रहेंगे। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, ये मनुष्यों का काम ही यही है, वो बस दिमाग है, चलता रहेगा। लेकिन श्री अरविंद कह रहे हैं अगर मनुष्य नहीं बदलेगा तो आप कोई भी सिस्टम बदल दीजिए, प्रॉब्लम वही रहेगी। वो कोई नया तरीका ढूंढ लेगा। पहले लोग पत्थरों से डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे और अब वो बम गिरा के कर सकते हैं, और भी नए तरीके आएंगे। तो मनुष्य को क्या बदला जा सकता है? तो ये जो नई अभिव्यक्ति है वो मनुष्य से आगे एक बृहतर हृदय के साथ, एक उच्चतर मन के साथ, एक प्रकाशमय जीवन के साथ, एक ऐसी देह जो ज्योतिर्मय देह हो, उसके साथ एक किसी नए जीव का, नई प्रजाति का, जो भी कह ले, न्यू रेस, उसका प्रकटन, यह है नूतन अभिव्यक्ति। और चूंकि ये नूतन अभिव्यक्ति या दिव्य अभिव्यक्ति की एक नई उड़ान, उसका मार्ग है, इसलिए इसमें हम भगवान को पाने का काम संसार को त्याग करके नहीं करते हैं। भगवान को पाना इसमें भी पहला स्टेप है, क्योंकि अगर हम दिव्य को नहीं प्राप्त करते तो नेक्स्ट स्टेप नहीं आ सकता। तो कई बार लोग कहते हैं ठीक है अगर दिव्य को पहले प्राप्त करना है तो हम कहीं पर भी जाकर के पहले दिव्य को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सारे पथ हैं, इंटेंस मेडिटेशन के पथ हैं, भक्ति का पथ है। तो कुछ लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि ठीक है हम पहले भगवान को प्राप्त कर लेंगे फिर हम इसमें आएंगे। तो वहां एक बेसिक एरर है। एरर क्या है कि ये जो स्पेशलाइज्ड मार्ग अब तक बने हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए सिवाय गीता के त्रिमार्ग को, उसको अगर आप हटा दें तो बाकी जितने भी स्पेशल मार्ग हैं उसमें आपको बाकी सब चीजों को इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके या उनको दबा करके करा जाता है। जो ज्ञान योगी है वो ज्ञान में इतना लीन हो जाता है कि अपने हृदय के भावों को, बिकॉज ही कैनॉट, जो केवल भगवान की भक्ति कर रहा है वो बाकी सब चीजों को अपने अंदर से खत्म कर देता है, तभी वो प्राप्त कर सकता है। प्राप्त क्या करता है, भगवान के एक एस्पेक्ट को प्राप्त करता है, बट ठीक है मोक्ष मिल जाता है उसको। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम कैसे भी पहले भगवान को प्राप्त कर लें, तो हमने इन भागों को जो नेचुरल डेवलपमेंट है वो नहीं होने दिया। तो भगवान तो प्राप्त हो गए, अब बोलेंगे मैं अभिव्यक्त कहां से करूं, मुझे तो तेरी बांसुरी बनानी है। तो हम कहेंगे हम तो, हमने तो सुखा दिया, हमारी जो बांस था वो तो बहुत कड़ा हो गया, वो डिस्कार्डेड हो जाएगा। तो इसलिए इस योग में बड़ी अद्भुत बात है कि इवन भगवान की प्राप्ति वो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन वो जीवन और कर्म को इग्नोर करके नहीं की जाती है, साथ साथ चलती है, ताकि जैसे जैसे हम, हमारा डेवलपमेंट हो वैसे वैसे भगवान जैसे जैसे प्रकट हो हमारे हृदय के अंदर। भगवान की प्राप्ति ऐसे तो नहीं होती कि अभी अचानक गए और भगवान मिल गए, ठीक है वो एक फंडामेंटल एक्सपीरियंस है, लेकिन साथ साथ हमारे नेचर के अंदर उनकी सुगंध, उनकी खुशबू, उनका सामर्थ्य, उनका प्रकाश, वो भी उदय होने लगता है। दैट इज द प्रोसेस। तो वो तभी संभव है जब हम लोग सभी भाग को लेकर के साथ चल रहे हैं। और इस योग का ये यूनिक चैलेंज है। कई लोग आश्रम आते हैं तो वहां ये वैसा आश्रम नहीं है जैसे मठ है कि आपने भोजन किया खूब इंटेंस मेडिटेशन में बैठ के। नो डाउट इंटेंस मेडिटेशन में बैठ के समाधि स्थाना की ये कॉमन चीज नहीं है। आंख मूंदना और मेडिटेशन करना दो बिल्कुल अलग चीज है। तो लेकिन चलो अगर आपको मिल भी गई एक इंटेंस समाधि की स्टेट मिल भी गई, तो आप फिर ये प्रकृति अगर नेग्लेक्ट की गई है, हमारे इंस्ट्रूमेंट को नेग्लेक्ट किया गया है, तो मैनिफेस्टेशन के लाइक वो नहीं रहेगा। और इसीलिए जिन्होंने भी भगवान को किसी ना किसी रूप में मैनिफेस्ट करने की चेष्टा की है उन्होंने स्वयं को जोड़े रखा है जीवन के साथ। क्लासिक एग्जाम्पल इज स्वामी विवेकानंद, और श्री रामकृष्ण परमहंस कहते भी हैं उनके बारे में कि ये नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो मूल लक्ष्य है नूतन अभिव्यक्ति, नूतन अभिव्यक्ति के लिए ज्ञान, ज्ञान जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम हर फैशनेबल चीज को हम कह सकते हैं कि नया है। नया तो एक वर्ड है ना, अब जो कल नहीं था आज आ गया वो नया है। तो पहले हमको ज्ञान, ज्ञान यहाँ पे किताब का ज्ञान नहीं है, किताब का ज्ञान स्क्रिप्चरल नॉलेज एक प्रारंभ हो सकता है क्योंकि आपको पता होना है कि पथ पे कैसे चलना है। लेकिन किताब ये तो टू डू, इजी टू डू एक्सरसाइज बुक नहीं है कि हमने पढ़ लिया नूतन अभिव्यक्ति, अच्छा ऐसे हम करेंगे अब हम एक कविता लिखेंगे, ये संभव नहीं है। तो हर लेवल पर ये अभिव्यक्ति नूतन होनी है, मन के अंदर एक नए ज्ञान के स्रोत का उदय होना है, ताकि ये जो रैशनल एनालिटिकल प्रोसेस है इवन इंट्यूशन के परे, इंट्यूशन भी एक सीमित दृष्टि देती है हालांकि करेक्ट दिखाती है। शेरविन ने वर्ड यूज किया प्लेनरी सुपरामेंटल नॉलेज, जो सारी संभावनाओं को एक साथ अपने अंदर धारण करके फिर वो पॉइंट करती है, बहुत डिफरेंट है देन इवन इंट्यूशन, सुपरामेंटल थॉट। इंट्यूशन के अंदर एक सत्य दिखाया जाता है, वो सत्य होता है लेकिन वो एक आर्क ऑफ लाइट, लेकिन सुपरामेंटल नॉलेज में जब वही सत्य दिखाया जाता है, और क्योंकि वो ट्रूथ है तो जैसे इंट्यूशन देख रही है सुपर माइंड भी देख रहा है, लेकिन सुपर माइंड उसके पीछे सारी संभावनाओं को देख चुका है, दैट मेक्स ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। क्योंकि वो उस चीज को जब देख रहा है तो उसके साथ जुड़ा जो कुछ भी है वो सब देख रहा है। हम श्री अरविंद के जीवन में ये देखते हैं। उसी प्रकार से हृदय के अंदर, वाणी के अंदर, हृदय के अंदर, हृदय के अंदर एक नए प्रकार का प्रेम। क्यों, अभी हमारे प्रेम में क्या प्रॉब्लम है, हर मनुष्य समझता है हम लोग तो प्रेम करते हैं, सबका यही रोना है, अरे हम तो कितना प्यार करते थे। माता जी बताती हैं कि जिसको मानव प्रेम कहता है वो एक डिफॉर्मेशन है, वो तो एक प्राण का एक आवेग संवेग आकर्षण विकर्षण हिसाब किताब। और इवन जहां मानव प्रेम उत्कृष्ट पर पहुंच जाता है, चैत्य का जिसमें स्पर्श होता है, दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, अगर ट्रू साइकिक लव का टच हो। लेकिन वह भी वो डिवाइन लव नहीं है, डिवाइन लव के अंदर एक अलग प्रकार की विजडम इनबिल्ट है। अगेन इस योग में फिर लोग कहते हैं अच्छा हम ह्यूमन लव को डिस्कार्ड कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम वही भूल कर रहे हैं कि हम हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी हमने प्रेम ही नहीं, हम श्री अरविंद कहते हैं ना आपने ह्यूमन लव भी नहीं जानते एक मनुष्य को प्रेम करना। आप भगवान को प्रेम करोगे और भगवान के प्रेम को अभिव्यक्त करोगे जब आपके अंदर प्रेम अभी रॉ मेटीरियल के रूप में भी नहीं प्रकट हुआ है। तो इसलिए लेकिन हृदय के अंदर एक नवीन प्रकार का प्रेम, एब्सोल्यूटली अनकैलकुलेटिंग अनसेल्फिश लव विच फ्लोज फ्रॉम द सोर्स, डिमांडिंग नथिंग एक्सपेक्टिंग नथिंग बट गिव्स इट सेल्फ नॉट टू द इंडिविजुअल बट टू द डिवाइन इन द पर्सन। ये प्रेम मतलब कितना सुंदर लगता है सुनने में, वो प्रेम अभिव्यक्त होना चाहता है धरती पर। जिस दिन वो प्रेम अभिव्यक्त होगा प्रेम की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप कभी दुखी नहीं हो रहे, देखो मैंने कितना प्रेम दिया, ये तो सारा दुख क्यों होता है, इसलिए नहीं कि लोगों के अंदर प्रॉब्लम है, माने जिसको आप प्रेम कर रहे हो प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रेम करना नहीं आता है इसलिए आप दुखी हो रहे हो। तो ये प्रेम के अंदर एक दिव्य प्रेम, उसी तरह प्राण के अंदर अभी हमारा जीवन कितनी चेष्टाएं करता है, इधर जाता है उधर जाता है, उसको मालूम नहीं है कैसे जाना है, एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिजायर के अनुसार चल रहा है। जब जीवन सीधा का सीधा सीमा की प्रेरणा, दिव्य शक्ति की प्रेरणा और उनकी ऊर्जा से चलेगा तो उसके अंदर एरर की संभावना निल हो जाएगी। एरर की संभावना निल होना इज नॉट इक्विवेलेंट टू फेल्योर की संभावना निल होना, क्योंकि जिसको हम ह्यूमन लेवल पे फेल्योर कहते हैं। एक जगह श्री अरविंद से किसी ने पूछा तो श्री अरविंद कहते हैं व्हाट इफ फेल्योर सूट्स द डिवाइन पर्पस बेस्ट। ये नहीं कि हमको फेल्योर के लिए काम करना है, पर श्री अरविंद को अगर हम देखें तो वो तो सुपरामेंटल एक्सपीरियंस उनको जेल के अंदर ही हो गया था, उसके पहले ही उनको इसके आभास आने लगे थे, फिर वो आ जाते हैं और ये एक प्रकार से कोई ये कह सकता है कि इतना सुंदर मूवमेंट था लेकिन बिखर गया, खंड हो गया, तो क्या वो फेल हुआ? नहीं। शेरविंद बाद में बताते हैं इसकी सीक्रेट। ये जो शेरविंद ने इनिशिएट किया था इट वाज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम्स, और मैं आज के कंटेक्स्ट में भारत के परिप्रेक्ष्य में तो ये कह सकता हूं कि शेरविंद जिस प्रकार के भारत और जिस प्रकार की भारत की पॉलिटिक्स, जिस प्रकार की चीज चाहते थे, हम ये कह सकते हैं कि आज थोड़ा थोड़ा उसकी तैयारी हो रही है, तैयारी, वी आर स्टिल फार फ्रॉम इट। तो फेल्योर सक्सेस, इमीडिएट फेल्योर इमीडिएट सक्सेस, अल्टीमेटली भगवान तो फुलफिल करते हैं अपने आप को। तो और उसी प्रकार से मानव देह जो बहुत ही सीमित है, एक लिमिट के बियॉन्ड वो ना ज्ञान की ऊर्जा, ना प्रेम की ऊर्जा, ना सौंदर्य की ऊर्जा, ना वो कर्म की ऊर्जा, किसी चीज को एक लिमिट के बियॉन्ड होल्ड नहीं कर पाता है, पात्र ऐसा है। तो एक नई देह, तो ये है नूतन अभिव्यक्ति। तो उसके विषय में, क्योंकि हम लोग प्रेम के बारे में पढ़ रहे थे, अब माता जी हम देखते हैं पहले ज्ञान की बात होती है फिर प्रेम के हमने कुछ पढ़े थे, अब नूतन अभिव्यक्ति की बात कर रही है। जून के कुछ प्रार्थनाएं हैं, पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग जैसे करते हैं टच करके, फिर वील गो टू द मेन प्रेयर। जून 12th की एक प्रार्थना है 1914 जिसमें माँ एक महावाक्य देती हैं, लेट thy विल बी डन इन द डिटेल्स एज इन द होल। होल में क्या हुआ कि हे माँ मैं एक कविता लिख रहा हूँ, माँ मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ, आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ, आप देखिए डिटेल्स में उसका सब कुछ, सही वर्ड, सही कलर, सही सब कुछ एकदम परफेक्ट परफेक्शन हो, एक ह्यूमन उसकी तो डिटेल्स में भी वो सब कुछ प्रकट हो। फिर जून 13th को माँ कहती हैं वी मस्ट फर्स्ट कॉन्कर नॉलेज, दैट इज टू से लर्न हाउ टू नो दी, टू बी यूनाइटेड विद दी, एंड ऑल मीन्स आर गुड एंड कैन बी एम्प्लॉयड टू अटेन दिस एंड, बट इट वुड बी ए ग्रेट मिस्टेक टू थिंक दैट ऑल इज डन वेन दिस एंड इज अटेन्ड। तो ये हमको ध्यान रखना है कि पहले ज्ञान, यहां ज्ञान के बिना अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो वो केवल हमारे हमारे लिए ज्ञान भगवान से एक होने का साधन है। कई बार हम ये सोच सकते हैं कि चूंकि हम कर्म कर रहे हैं तो वो नई अभिव्यक्ति। श्री अरविंद कर्मयोग में ये दो बातें जोड़ते हैं, एक जगह लिखते हैं ऑर्डिनरी कर्मयोग और दूसरी ओर लिखते हैं कि ऑर्डिनरी कर्मयोग जो गीता में है। ऑर्डिनरी कर्मयोग में लक्ष्य क्या है, कर्म के द्वारा नेचुरली उसमें ज्ञान और प्रेम जुड़े हुए हैं, भगवान से एक होना। और उसके बाद श्री अरविंद कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल ऑफ कर्मयोग, नेक्स्ट लेवल क्या है, जब भगवान से जुड़ गए तो अब भगवान स्वयं को अभिव्यक्त करेंगे। तो उसकी बात यहां पे हो रही कि ये समाप्त नहीं होता है। ऑल इज डन इन प्रिंसिपल, द विक्ट्री इज वन थ्योरिटिकली, एंड दोज हु हैव फॉर देयर मोटिव ओनली द इगोइस्टिक एस्पिरेशन फॉर देयर ओन सेल्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड एंड कैन देन लिव ओनली इन एंड फॉर दिस कम्युनियन विदाउट एनी केयर फॉर दाई मैनिफेस्टेशन। ये क्यों माँ कह रही है विक्ट्री इन थ्योरी इन ए सेंस, किसी व्यक्ति ने मानसरोवर जाने का संकल्प लिया और गया, बहुत टफ यात्रा है, कैसे भी करके गया, सारी मुसीबतें झेल के गया, पहुंच गया, तो हम कह सकते हैं इट इज अ विक्ट्री, मजाक नहीं है वहां पर जाना, आ गया या वहां बस गया या शिव जी में रम गया, वो एक बात है। लेकिन क्या उसने बाकी सबका मार्ग सुलभ किया? ओनली पार्शियली, कि तुम मानसरोवर जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन यदि कोई आ करके आपके रास्ते खोल दे, खूब सारे 3-4 रूट्स बना दे और उनके अंदर ऐसा संभव करे कि एक साधारण मनुष्य भी जो इतना सक्षम नहीं है उतने दूर जाने के लिए इतनी लंबी यात्रा, वो भी कम से कम उसके करीब से करीब पहुंच जाए, तो फिर आपने क्या किया, दैट इज न्यू मैनिफेस्टेशन एक प्रकार से। यानी आपने वो मार्ग ना केवल व्यक्ति, इसीलिए मां कहती है इगोइस्टिक एस्पिरेशन। तो इगोइस्टिक एस्पिरेशन क्या होती, मैं तो पहुंच गया, अब मैं ये बता सकता हूं ऐसे ऐसे जाओ, जा सकते हो तो जाओ, हिम्मत कर सकते हो तो जाओ, नहीं हिम्मत कर सकते हो तो जस्ट इमेजिन दैट देयर इज ए मानसरोवर। तो यहां पर इसकी बात हो रही कि वो चीज, बट दोज हुम दाउ हैज चोजन एज दाई रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉन द अर्थ कैनॉट बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट सो ऑब्टेन्ड। कौन है वे लोग जिनको विशेष रूप से माने चुना है इस कार्य के लिए, उनको चुना गया है। श्री कृष्ण जब आते हैं धरती पर तो आप देखेंगे उनके साथ जो जो उनके काम के लिए थे, भगवान का प्लान एकदम फुल प्रूफ हो रहा है। एक जगह रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में श्री अरविंद ये लिखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सोल्स आर वेटिंग फॉर मिलियन ईयर्स टू कम टू अर्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। भगवान ने उनको रोक के रखा है, कौन जाने कौन से ऋषि मुनि, द्योमन भाई के बारे में मान लिखा था ना कि ही इज ए ऋषि फ्रॉम द वेदिक टाइम्स। तो ऐसी सोल्स हैं जो एक काफी उस पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने कहा नो आई विल वेट, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आभास की ये तो अपूर्ण है, वो मर्ज नहीं होना चाह रही हैं और प्रतीक्षारत हैं। वो ऊपर से जो भी हेल्प कर सकती करती हैं, इसका हम लोग उल्लेख देखते हैं स्पिरिचुअल लिटरेचर में। यही उस दिन जब बात हो रही थी, ज्ञानगंज कह लो या जो भी कह लो, दे आर देयर इन द सटल वर्ल्ड टू एन एक्सटेंट, दे आर हेल्पिंग मैनकाइंड। लेकिन एक टाइम आता है जब वो भी धरती पर जन्म लेके, जो एक अलग डायमेंशन है ऑल टुगेदर, धरती पर जन्म लेना मतलब सीमाओं को स्वीकार करेंगी अब वो, तो वो प्रतीक्षारत हैं आने के लिए नए मैनिफेस्टो। और उनको कौन चुन रहा है, भगवान चुन रहे हैं, कम वो होता है ना कि पिकअप योर मैन, जो कमांडोस में होता है ना ऑपरेशन में, तो लीडर को कहा जाता है यू पिकअप, क्योंकि वो इतने सारे लोग हैं तो आप पिकअप करो, किसको लेकर के जाओगे, तो पिकअप करता है आर्टिकल 370, पिकअप योर टीम। तो भगवान पिकअप करते हैं वो टीम को, और इसीलिए आप देखिए फुल प्रूफ प्लान है। आप किसी को रख लो, भीष्म को रख लो, होता है ना ये गीता के पहले दुर्योधन क्या कहता है, इसको उसको हमारी टीम में है, तो श्री कृष्ण कहते हैं इनको तो मैंने चुना है, तुम किसी को भी ले लो, आई हैव कॉल्ड माई चोजन वंस। गोपी कौन थे, ये सब वो थे जो रियलाइज्ड बीइंग्स हैं जिनको वो लेके आए थे, क्यों, धरती पर प्रेम प्रकट करना था। श्री कृष्ण क्या क्या उन्होंने डिस्कशन हुआ होगा हायर प्लेन्स में, इफ आई मे से सो। भाई देखो वेद उपनिषद बहुत अच्छे हैं, भक्ति तो आई नहीं, चलोगे तुम लोग? हाँ चलिए। ऐसी भक्ति, और पता नहीं लोग अभी भी कहते हैं जो वेदों में, वेदों का मूल तत्व तो है, बट श्री कृष्णा इज नॉट ए रेपिटेशन ऑफ द वेदाज एंड द उपनिषद। ऐसी भक्ति जिसकी कल्पना नहीं की थी। महर्षि अरविंद कहते हैं, आप ये जब हुता ने पूछा कि माँ आपके जाने के बाद क्या होगा, क्या माँ कहती हैं, ऐसी संतानें आएंगी मेरी आने वाले समय में कि जिसके सामने तुम लोगों की भक्ति, समथिंग टू दैट इफेक्ट, दे विल लव मी मच मोर देन व्हाट यू कैन इमेजिन। और सच बात है, माँ सामने है फिजिकल में, आप प्रेम कर रहे हो और माँ को देखा नहीं। कई बार लोग पूछते हैं कि पांडिचेरी का मिरेकल, मैं कहता हूँ बहुत सारे हैं, लेकिन एक तो ये कि हम एक अज्ञात जिनको हमने देखा नहीं, मुझसे पूछते कई बार लोग माँ को देखा, क्या बोलो आप, देखते भी तो कितना देखते। तो जिनको देखा नहीं उनसे आप इतना प्यार कर बैठते हो कि आप कहते हो मेरा सब ले लो, पर मुझे तो यही चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? नॉर्मली तो प्रेम ऐसे होता नहीं है ना, बट यू सी जस्ट ए पिक्चर, यू हियर ए नेम एंड यू आर गिवन। सो ये जो प्रेम है, तो माँ ये कहती है आने वाले समय, श्री रामकृष्ण परमहंस भी ये कहते हैं कि आने वाले समय में जो गॉड लव की जो धारा बहेगी, और ये सब न्यू मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है। तो जिनको भगवान ने चुना हुआ है तो उनके अंदर क्या होगा, वो केवल भगवान से यूनियन इससे संतुष्ट नहीं होंगे। आप उनको कितना भी बोलोगे कि देखो मोक्ष मोक्ष मोक्ष, वो कहें भैया आप रखो, थैंक यू सो मच। नहीं, उनके अंदर भीपसा ही नहीं डाल दी है भगवान ने, वो कभी ऐसे पथ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो नई अभिव्यक्ति ही चाहते हैं, वो धरती का कल्याण चाहते हैं, मानव की पूर्णता चाहते हैं। तो वो उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसी पिक्चरें आती है ना, बीइंग्स ऑफ द अदर डायमेंशन, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। गीता में इसका एक हिंट दिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, गीता में बहुत चीजों का, नॉस्टिक बींग का भी हिंट है। श्री अरविंद जो लास्ट टू चैप्टर्स हैं द लाइफ डिवाइन के, उसमें गीता को कोट करते हैं, कैसी होगी पर्सनालिटी उसकी। तो वहां पर एक हिंट देते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द मैन हु हैज रियलाइज द डिवाइन, वो क्या करता है। तो श्री कृष्ण एक शब्द कहते, सर्वभूत हिते रता, किस काम में व्यस्त रहता है? सबके कल्याण में, सर्वभूत हिते रता। श्री अरविंद इसको इलेबरेट करते हैं, तो उसका यही काम है। उसे आप बोलोगे मोक्ष मोक्ष, कहते हैं ठीक है भैया, मालूम है मोक्ष के बारे में, वो मेरा गांव नहीं, वो मेरा रास्ता नहीं। तो यहां मां बता रही है, उससे उनकी पहचान होगी। टू नो दी फर्स्ट एंड बिफोर एवरीथिंग एल्स, यस, बट वंस द नॉलेज ऑफ दी इज एक्वायर्ड, देयर रिमेन्स ऑल द वर्क ऑफ दाई मैनिफेस्टेशन, एंड देन इंटरवीन द क्वालिटी फोर्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफेक्शन ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन। मतलब कौन कौन उस यंत्र के लिए तैयार हैं, इतना काफी नहीं है। हो सकता है कोई भगवान को, श्री रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण है ना, कि स्वामी की क्या नाम था उनका, ब्रह्मानंद और निखिलानंद, ये दोनों ये काफी रियलाइज थे, ब्रह्मानंद स्पेशली, ही वॉज वेरी हाई इन रियलाइजेशन, बट इंस्ट्रूमेंट तो स्वामी विवेकानंद बने। कॉम्प्लेक्सिटी उनकी नेचर, मतलब वो जिस तरह का उनका इंस्ट्रूमेंट था, दैट वॉज रिक्वायर्ड। सो यहां पर उसकी बात होती है। तो ये लोग किसी भी अनुभव से डैजल्ड नहीं होंगे और केवल भगवान का प्रकट करने में सहायक होंगे। और माँ कहती है बहुत इमेंस प्रोग्राम है। अब आते हैं हम, आज जो प्रार्थना पढ़नी है, June 14th, 1914, ये सब बैकग्राउंड के बाद माँ कहती हैं, इट इज़ ए वेरिटेबल वर्क ऑफ क्रिएशन वी हैव टू डू, बहुत बड़ा काम है, महत कार्य है हमको। सोचो, ऐसे सोचो तो कितना आनंद आता है। कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, हम आश्रम में मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल कर रहे हैं। नहीं भाई, नई सृष्टि का कार्य हो रहा है यहाँ। हम चाहे पत्थर ही उठा रहे हो पर नई सृष्टि का मंदिर बना रहे हैं। इट्स ए डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। मातृ मंदिर में जो लोग गड्ढा खोद रहे थे, अगर आप उनसे पूछते क्या कर रहे हो, वो अगर बोलते गड्ढा खोद रहे हैं, किसी ने बोला गड्ढा खोद रहे हैं, बोले मातृ मंदिर बना रहे हैं। तो ये जो भाव है ना, वी आर एंगेज इन द वर्क ऑफ ए न्यू मैनिफेस्टेशन, इसकी गरिमा हमको सदैव स्मरण रखनी चाहिए। वेरिटेबल वर्क, एक ऐसा काम जो अभूतपूर्व है, टू क्रिएट न्यू एक्टिविटीज एंड न्यू मोड्स ऑफ बीइंग। एक्टिविटीज, शेरविन से किसी ने पूछा ह्यूमन माइंड तो कितनी एक्टिविटीज है ना, कितने फील्ड्स हैं। तो सुपरामेंटल लोगों का अंदाज होता है ना, अरे भगवान से मिलके तो आदमी मोनोटोनस हो जाता है। पर अगर आप सावित्री में डिस्क्रिप्शन करें न्यू बीइंग्स का, उफ क्या डिस्क्रिप्शन है। प्रॉफिट एंड लवर एंड किंग एंड स्विमर्स इन एक्सटेसीज फायरी फ्लड्स, वॉइसेज दैट कम्यून विद द इनएफेबल, लिप्स दैट चैंटेड द एंथम ऑफ द सोल। क्या वर्णन है, अगर आप पढ़ो उसको तो लगता है ये जो अब तक कल्पना नहीं हम कर सकते हैं, वो न्यू मोड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन आने वाले हैं। और शेरविन कहते हैं कि जिनके सामने मानव मन की मैक्सिमम उपलब्धियां फीकी पड़ने लगेंगी, जैसे जब मनुष्य आया तो पशु जगत की जितनी मैक्सिमम संभावनाएं थी वो फीकी पड़ने लगी। लेकिन एक स्टेज होगी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो माता जी बताती हैं कि हर स्पेसी नई न्यू स्पेसी जब आती है तो वो पूर्व स्पेसीज की, उसके पहले जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी वो शक्ति रहेगी तो वो कभी इवोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा। ये बात मैंने बाली सुग्रीव की कहानी में भी बात की है। तो जो पशु जगत की जो वाइटैलिटी है मनुष्य के अंदर, वो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन उसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, मन। लॉजिकली जब अब न्यू बीइंग आएगा तो क्या लूज करेगा, दिस रैशनल एनालिटिकल एक्टिविटी जिस पर वो बहुत गर्व करता है। तो जब अगर लोगों को देखें जो रैशनल नहीं दिखते हैं, बहुत एनालिटिकल नहीं है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए क्या हो रहा है, हमको समझना चाहिए कोई नई चीज़ प्रकट हो रही है। कई बार ये बहुत डिफिकल्ट होता है जो प्योरली रैशनलिटिकल प्रोसेस से, तो उनको ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आश्रम में पूछा था किसी ने, आठ जब से मैथमेटिशियन थे यूके में, आप यहाँ क्या कर रहे हो, कहता है मैं बताऊंगा ना आप समझोगे नहीं। कहता नहीं मुझे मालूम है आप पोइट्री लिख रहे हो। उन्होंने कहा ये नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहे हो। कहता है मैं अगर बोलूं कि मैं अपने ईगो को कॉन्कर करने की चेष्टा कर रहा हूं, विल यू अंडरस्टैंड एनीथिंग। न्यू मोड्स ऑफ एक्टिविटीज, झलक इसकी हम श्री मां और श्री अरविंद के जीवन में देखते हैं। श्री अरविंद कौन सी न्यू मोड, एक अगर हम देखें, उन्होंने ह्यूमन वॉइस को, वर्ड को, किस मंत्र के बारे में कहते हैं हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन स्पीच। श्री अरविंद के आने के पहले जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, वेदों पे, उपनिषद, गीता, कुछ स्टैंडर्ड हमारे मंत्र हैं। श्री अरविंद की वाणी का हर एक वाक्य मंत्र है, इंग्लिश में है किसी में, माँ की जो वाणी हम पढ़ रहे हैं, हर वाणी को उस लेवल तक ले गए। और कैसे वो एक्सप्रेशन है, इट्स ए टोटली न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें अगर मैं चला जाऊं तो पूरा उसी पर हो जाएगी। श्री माँ, न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक, आप इसको ना वेस्टर्न में डाल सकते हो ना इंडियन में डाल सकते हो, पर है वो म्यूजिक, अद्भुत है। लेकिन उसकी एक कैटेगरी, दो चीजें उसके अंदर होंगी न्यू मोड ऑफ मैनिफेस्टेशन में, फ्रीडम, प्लास्टिसिटी, वाइडनेस, इन्फिनिटी। मतलब वो एक रिपीटेटिव पैटर्न नहीं होगा, इसीलिए सुपरामेंटल पर्सनैलिटी को समझना बहुत कठिन होगा, आप उसको एक स्लॉट में नहीं डाल पाओगे। हम लोग नॉर्मली कहते हैं ये व्यक्ति तो ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, इसलिए उसको कहा गया है इम्पर्सनल पर्सनैलिटी विद ए वाइड यूनिवर्सैलिटी। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा ही करेगा, वैसा ही करेगा, इस तरह से व्यवहार, नाना प्रकार के मानवीय संबंध में भी नई संभावना आएंगी, उसके मशीन से डीलिंग में नई संभावना आएंगी, क्या पता वो मशीन से बड़े अलग ढंग से डील करे। तो कई बार शेयर की, अब मेरी अपनी वो स्कूटर खराब होता था, अब तो चीज़ें बदल गई, तो अब क्या कहता था मैं, स्कूटर को प्रे करता था, भैया नाम भी दे दिया था टॉडी, टॉडी टॉडी जाना है मुझे आश्रम, प्लीज स्टार्ट हो जाओ, मैं तुझे दिखवा दूंगा। तो टॉडी स्टार्ट हो जाता था, मैं भी भूल जाता था, दो दिन बाद फिर ठप, टॉडी सॉरी भूल हो गई, कल पक्का तुझे ले जाऊंगा मैं। अब वो स्कूटर के साथ मैं संबंध, किसी को पता चलता तो वो क्या कहता, साइकेट्रिक्स डॉक्टर खुद ही पगल हो गया है। यही बोलता है, लेकिन मेरे लिए वो रियल चीज है। वो बचपन से ही देखा था कि श्री कृष्ण की वो प्लास्टिक की जो सो कॉल्ड, उसे मेरा लिविंग रिलेशन था। तो ये एक नई प्रकार का जगत आने वाला है, और ये बच्चों में हम देखते हैं कैसे वो लिविंग रिलेशन फॉर्म करते हैं। तो ये न्यू मोड्स, सो दैट दिस फोर्स अननोन टू द अर्थ, तो न्यू मैनिफेस्टेशन सुप्रामेंटल फोर्स, उसके पहले डिवाइन मैनिफेस्टेशन इज थ्रू मेंटल फोर्स, वाइटल फोर्स, फिजिकल फोर्स, दिस टू विल बी डिवाइन मैनिफेस्टेशन, बट न्यू बिकॉज द बेसिस विल बी द सुप्रामेंटल फोर्स, द डायरेक्ट डिवाइन शक्ति, अननोन टू द अर्थ टिल नाउ मे मैनिफेस्ट इन इट्स प्लेनिट्यूड। अभी भी सुप्रामेंटल कार्य कर रहा है लेकिन छिपा हुआ, प्लेनिट्यूड में नहीं। जैसे आप राजा ऑर्डर देता है, मंत्री प्रधानमंत्री थोड़ा अपने पॉकेट में रखता है, फिर वो मंत्री मंत्री अपने पॉकेट में रखता है, जाते जाते जब लास्ट में आता है तो कहते हैं हमको तो पैसा मिला नहीं, अभी डायरेक्ट डिजिटल ट्रांसफर शुरू हो गया। तो उस तरह का न्यू मोड ऑफ मैनिफेस्टेशन हुआ ना, पैसे का न्यू मोड ऑफ मैनिफेस्टेशन हो रहा है। पहले कैसे पॉकेट में पैसों की गड्डी रख के घर में गड्डी रखना, अभी आ गई ना नई चीज। तो पैसों का जो ये ग्रिप होता है ना, मेरे पॉकेट में पैसे हैं जो दिमाग के ऊपर चढ़ के रहता है, वो खत्म। क्योंकि पॉकेट में जब पैसे होते हैं तो दिल खाली हो जाता है। तो अभी आपको आपको खुद नहीं पता पैसे कहाँ है, कोई अननोन वर्ल्ड है जहां पर है, जहां जीपे से चला जाता है। तो ये एक नया जगत है। इट इज टू दिस वर्क ऑफ ए ब्रिंगिंग टू बर्थ, ये यस दिस इज अ एक्शन ऑफ द सुप्रामेंटल फोर्स बाय द वे। क्यों? क्योंकि शेरविन क्या कहते हैं कि मनी इज ए वाइटल फोर्स, उसका पर्पस है सर्कुलेट करना। तो ये सुप्रामेंटल एक्शन से किसी के ब्रेन में ये आइडिया आया, मींस बन गए। तो क्या हुआ, अब मनी का फिजिकल फेनोमेना की जगह अब वो एक सूक्ष्म जगत में चला गया। इट इज ए मैनिफेस्टेशन, पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन। इट इज टू दिस वर्क ऑफ ए ब्रिंगिंग टू बर्थ दैट आई हैव कॉन्सेक्रेटेड माई सेल्फ ओ लॉर्ड, बिकॉज इट इज दिस दैट दाउ डिमांडेस्ट फ्रॉम मी। माँ कहती है इस नए जगत को, इसलिए डिवाइन मदर। क्यों? क्योंकि अब नया जगत जन्म लेना है, तो जन्म तो माँ की ही गोद से होगा। माँ ही जन्म देंगी, माँ ही उसको बड़ा करेंगी, माँ के दुग्धपान से माँ की गोद में बच्चा बड़ा होगा। और इसीलिए डिवाइन मदर, क्योंकि वो डिवाइन शक्ति का एस्पेक्ट अवतरित होकर के, और इसीलिए जब नया जगत जन्म ले लेता है, माँ पूरा कार्य करके 56 के बाद वो कहती हैं, उनकी अप्रैल में ये प्रार्थना है 56 में या बाद में आई हैव फॉरगॉटन, पर माँ कहती हैं कि जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम हो गया, क्या मेरी कोई अब आवश्यकता है, मुझे कोई साइन चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई साइन मिलता है, माँ रहती हैं। फिर एक जगह लिखती हैं, कहती है अब मेरे बच्चे इमेंसिपेट हो गए हैं। बड़ी टचिंग स्टोरी है, प्रणब दा लिखते हैं इसके बारे में कि एक बार उन्होंने, वो जा रहे थे पहले सब माँ को बता के, बच्चे छोटे होते हैं ना, मम्मी मैं जा रहा हूँ, पापा मैं जा रहा हूँ, बड़े हो जाते हैं कहते हैं व्हाई शुड आई टेल यू, फिर बाद में कहते हैं आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। तो अब ऐसी कुछ हुआ होगा कि बिना बताए चले गए, तो माँ को पता चला, माँ ने ये नोट लिखा कि Now I see that my children are emancipated and they do not have need of me anymore. दादा के हाथ में ये नोट गया, कहते मुझे इतना दुख हुआ उसके बाद, मैंने कहा ये, but she knew कि बच्चे बड़े हो गए हैं। After all जब माँ physical world से जब withdraw करती physically, she knows कि अब तो ये हो गया ही होगा। भला कोई माँ बिना सारी तैयारी के जाएगी? जाए भी कहाँ, वो यही है, पर otherwise फिजिकल वर्ल्ड में जो कुछ जरूरी है शी इज प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। तो ये सारा माँ बताती हैं कि इस काम के लिए मैं आई हूं, जन्म देने के लिए नए जगत को। बट सिंस इट इज फॉर दिस वर्क दैट दाउ हैज चोजन मी, दाउ मस्ट गिव मी द मीन्स, दैट इज टू से द नॉलेज नेसेसरी फॉर इट्स रियलाइजेशन। कहती ये काम मुझे ये करना है, ये तो मुझे स्पष्ट है, ये 1914 की प्रेयर है, लेकिन फिर कैसे करना है, मीन्स सारे मीन्स, क्योंकि अब श्री अरविंद क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैं तो रियलाइज कर सकता था सुपर माइंड को बिफोर द मदर्स कमिंग, पर मैं इसको दूसरों को हेल्प नहीं कर सकता था। तो वो मींस माँ को ऑफकोर्स मिलते हैं, सारा वो बात की कहानी है, पर प्रार्थना कर रही हैं। तो हमको इससे क्या, हमारे लिए क्या इसका इम्पैक्ट है, अगर हमको माँ का काम दिया जाता है तो हमको ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि माँ उसके लिए मींस देंगी। ये नहीं कि हमको कुछ करना नहीं, बट शी विल गिव द मींस। उदारदा को माँ ने काम दिया था कि ये पूरा फनी वो डिपार्टमेंट जो बना है हार्पागॉन, तो हम लोग यही बनाएं, तो कैसे बनाएं, गोलकुंड के लिए उनको सारे नट बोल्ट माँ कैसे बनाएंगे, स्टार्ट माँ पैसे कहाँ से आएंगे, ओ यू कैन आस्क, तो माँ हमको कौन देगा, माँ एक रुपया रखती है उनके हाथ में, कहती नाउ यू गो, एक रुपया हाथ में लेके जाते हैं, पैसे आते हैं कहाँ कहाँ से। हमने तो ये एक मच लोअर लेवल पे बेंगलोर में ये देखा, जब वहाँ के भवन की बात हो रही थी, पैसे ही नहीं, और भवन है मतलब महाराजा का पैलेस है, तो हम लोग डेफिसिट में थे -5,000, क्यों, अकाउंट में थे 7,000, देने थे 12,000 कर्जा। तो ऐसे ही मैं लिखता था डायरी में, माँ गाय, दो गाय हैं जर्सी वाली, इतना दूध दे रही हैं रोज, माँ एक ग्वाला है वो काम नहीं करता, एक वो बाकी, ऐसे करके हम ब्लाइंडली शुरू किया हमने, ऐसे ही एक पहुँच गए क्या रैंडम दुकान पे पहुँच गए, रिलिक्स आने हैं 6 फरवरी का 1993 का, दुमन भाई के उसमें नोट है, हमको शेरविंद के रिलिक्स के लिए पैसे चाहिए, कुछ नहीं, तो 1,111 जहाँ गए, फिर सडनली 1% के, उसने कहा पूरा का पूरा आई विल टेक केयर। तो ये मीन्स आएंगे, हम ये सोचते कैसे होगा, ये जो सोचते ना पहले मीन्स, अगर आपको ये काम दिया है तो मीन्स आएंगे, नहीं दिया है तो नहीं आएंगे, एज सिंपल एज, आप फोर्स करके नहीं कर सकते हैं। इफ दिस इज मेंट फॉर यू, यू विल हैव ऑल द मीन्स। और हर चीज में, केवल बात पैसे की नहीं है, आपकी जो विधा है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, सब माँ डेवलप करेगी। माँ कहती कोई भी काम मैं देती हूँ, आई गिव एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर द वर्क, और ये उसका साइन भी होता है कि मदर हैज मेड यू फॉर दिस वर्क, सब कुछ शी विल गिव। वी शैल यूनाइट अवर एफर्ट्स, द होल इंडिविजुअल बींग विल कॉन्सेंट्रेट इट सेल्फ इन ए कॉन्स्टेंट अपील Towards the knowledge of the way of manifestation of the force. अब मैं एक नए ज्ञान की बात करें कि इसको कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, उसके लिए वो अभिप्सारत है। And thou, supreme center of the being, thou wilt fully emanate the force so that it may penetrate, transfigure and surmount all obstacles. इतनी सुंदर बात है, माँ के काम में बाधा आ रही है, कैसे दूर करना है, हम लोग क्या करते हैं, वकील के पास भागो, पुलिस के पास भागो, दैट मीन्स वी डोंट नो हाउ इट शुड बी डन। इफ यू आर डूइंग इट, मतलब हमको ये नहीं मालूम है कि इसको कैसे करना है, ये नहीं कि ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं सब, लेकिन दैट इज नॉट द वे टू डू इट। अगर ये भगवान का काम है तो आपको उनसे ही अभिप्सा करनी है, और फिर आप काम करेंगे, देखेंगे धीरे धीरे मींस मिलते जा रहे हैं, चीजें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, व्यक्ति आ रहे हैं, साधन जुटते जा रहे हैं, एंड विल बी सरप्राइज्ड। अब सावित्री भवन भी वही है, आई थिंक परसों सदावान के जन्मदिन पर दे कीपिंग कार्यक्रम, बट लुक एट इट दैट वे, किसी ब्रिटिश लेडी जो आई कब, कौन समय में, अब वो क्या जानती थी यहाँ भारत, कोई ऐसे नहीं कि वो बिलियनर है, कैसे चीजें आई, साधन आए, अल्टीमेटली वी हैव सच ए वंडरफुल प्लेस, बहुत बढ़िया गिफ्ट है, अद्भुत गिफ्ट है गोलकुंड, साधन आए, इंजीनियर आए, उसकी कहानी आप पढ़े, ऑरोविल इटसेल्फ इज ए मिरेकल। आश्रम कभी भी कोई चीज मेंटली प्लान करके नहीं हुई, यही यहाँ की ब्यूटी है, और ये चीज इसीलिए रेप्लीकेट अगर करना है किसी को भी ये चीज, तो ये दिस इज द वे, हम पहले हमारे पास चीजें आ जाए फिर हम देखेंगे, इट डजेंट वर्क। अगर आपकी अभिप्सा सच्ची है, डिवाइन ने सैंक्शन किया है, तो सब चीज़ें आएंगी, आप कोई सेंटर चला रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, ये आपके पास आएगा, प्रेरणा भी आएगी, अगर आपके पास पैसे हैं तो उस दिशा में प्रेरणा आएगी, और अगर ये नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि अभी इसका सैंक्शन नहीं मिला है, तो वो प्रे कर रही हैं कि आप ही की शक्ति आपसे ही पूरी, क्यों भगवान शक्ति के साथ सुप्रीम क्यों चाहिए साथ में, सैंक्शन तो वही देते हैं, सब साथ साथ चलता है, ये उनका संबंध है। माता जी सुप्रीम में एक जगह कहती है ना, ही लीड्स एंड देन दे बोथ गो टुगेदर, ही ओपन्स द डोर देन शी एंटर्स एंड डज द वर्क, सृष्टि की बात कर रही है, तो दोनों साथ साथ। तो यहां क्या कह रही माँ, दाउ विल्ट फुल्ली इमिनेट द फोर्स सो दैट इट मे पेनेट्रेट ट्रांसफिगर एंड सरमाउंट ऑल ऑब्स्टेकल्स। इमिनेट द फोर्स मतलब आपकी पूरी स्वीकृति के साथ, तब कोई बाधा ऐसी नहीं है जो रह सकती है। और कभी अगर ऐसा लगे कि इस चीज अब नहीं चलने वाली है और, तो उसका एक ही कारण होता है कि भगवान ने अपना सैंक्शन विड्रॉ कर लिया है, तो आप देखें कि वो चीज अपने आप प्रयास भी कर रहे होते नहीं, क्योंकि उन्हें सैंक्शन, क्योंकि कोई भी चीज इटर्निटी के लिए नहीं होती है, सैंक्शन था सब आ रहा है, किसी भी कारण से सैंक्शन विड्रॉ कर लिया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके प्रयास नहीं सफल हो रहे। दिस इज द पैक्ट दाउ हैज साइंड विद द वर्ल्ड्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ, भगवान की प्रॉमिस ही है, पैक्ट है। हम बोलेंगे कहां है पैक्ट, डोंट वरी, डिवाइन नोज इट, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और जब जरूरत होगी तो वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। सब लोगों ने कल देखी ना प्लेग्राउंड में आर्टिकल 370, जब टाइम आएगा, जब जरूरत होगी तो मींस बन जाएंगे और आपको मिल जाएगा। देखिए दैट इटसेल्फ इज अ साइन हाउ थिंग्स हैपन, नहीं तो चलता जा रहा है पुराने ढर्रे पर। तो दिस इज हाउ उनका पैक्ट है, जब व्हेन द टाइम इज राइट वो आंख के सामने ले आएंगे, विचारों में आ जाएंगे, समबडी विल थिंक इन दिस वे लाइक ए फ्लैश ऑफ लाइट। सो ये सारी चीजें जिसमें हम देखते हैं मानव इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, तो वो सारे ऐसे जैसे भीष्म के अंदर वो आ जाता है ये विचार, नहीं नहीं अर्जुन तो मुझ पर बाण चलाना लेकिन शिखंडी को ले आना, खुद ही बोलते हैं। क्यों उनके दिमाग में ये फ्लैश हुआ, उन्होंने देखा जब श्री कृष्ण अपनी प्रॉमिस तोड़ सकते हैं सत्य के लिए, मैं क्या पकड़ करके बैठा हूं अपनी प्रॉमिस को। श्री कृष्ण का एक्शन देखिए, अचानक जब भीष्म पितामह, देन ही रियलाइजेस कि व्हाट ए फूल आई एम, पूरी लाइफ में अपनी प्रॉमिस को पकड़ करके बैठा हूं, लेकिन जो ओरिजिनल प्रॉमिस है धर्म की संसार में उसको, तो अगले दिन वो बोल देते हैं अर्जुन, या शायद उसी शाम की बात है, शिखंडी को ले आना, ये मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊं, खुद ही रिवील करते हैं, उनके अंदर ये प्रेरणा आ जाती है। सो दिस इज हाउ भगवान कार्य करते हैं, क्यों उन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ है। दाउ हैस्ट मेड ए प्रॉमिस, दाउ हैस्ट सेंट इन टू दीज वर्ल्ड दोज एबल एंड दैट विच इज एम्पावर्ड टू फुलफिल दिस प्रॉमिस। जैसे होगा जो जो लोग इस महा नवीन सृष्टि में जो इस महत कर्म के सहभागी होने हैं उनको एक्विप करके भगवान ने भेजा है, वो कैसे करेंगे अपने आप, उनको ऐसा लगेगा आपको बाहर से कि ये मनुष्य, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य है बाहर से लेकिन उसको भगवान ने एम्पावर, देखिए वर्ड कैसा है कितना सुंदर है, एम्पावर्ड, क्या वर्ड है, वही चीज है। एक व्यक्ति जाता है वो वही काम कर रहा है, वही बात कह रहा है, असर नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल लाइफ में देख लीजिए कि कोई आप कहीं जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाह रहा था लेकिन क्या करूं, तो कल देखा था हमने। नहीं, हर चीज में आप देखेंगे ना ये लॉजिक कैसे काम करती है, कि एक लेडी है, नॉर्मल लेडी है, उसका वर्ड कैरीज ए वेट, क्यों, शी इज एम्पावर्ड। सबको पता है जितने भी लोग हैं, अब ये प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे बोल रही है, उसको बोलते हैं एम्पावर्ड। तो वो जितनी भी और फोर्सेज है जो अपोज कर रही हैं, वही जिसके सामने वो तरह तरह की बाधाएं दे रही थी, वही शक्तियां अचानक वो टेम्ड हो जाती हैं और वो एक्सेप्ट करती हैं. ओके आई नो यू आर, इट्स नॉट यू, यू आर रिप्रेजेंटिंग, यू हैव द पावर फ्रॉम द, और वो कहती भी है, कहती है तुम चलोगे कि मैं दिल्ली फोन लगाऊं. वेरी सिग्निफिकेंट. उनको पता है कि अब कोई और उठा करके बोले कि हम फोन करेंगे तो कुछ होगा, फर्क नहीं पड़ेगा. तो ऐसे लोग भगवान ने इस काम के लिए भेजे हैं पृथ्वी पर. इसको माँ और जगह भी कहती हैं, उनको एम्पावर करके भेजा गया है इस काम के लिए. और जिनको भगवान का एम्पावर्ड है उनको क्या चीज है जो रोक सकती है. यही तो है ना अर्जुन की विशेषता, ही इज एम्पावर्ड. वो कौन था, विंस्टन चर्चिल, ही वॉज एम्पावर्ड. तो जब तक वह खुद कहता है, वो कहता है कि मुझे पता नहीं कौन मुझे बचाता है अचानक, हालांकि उसका पर्सनल चरित्र कोई देखेगा तो कहेगा ये कैसा, भगवान का चुनाव है, लेकिन वो भगवान की सुरक्षा है तो अनटच्ड रहता है. तो वो एम्पावरमेंट जो होती है, वो माँ कहती है आपने भेजा है उनको जो एबल है, सक्षम है, और उनको आपने एम्पावर किया है इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए. दिस नाउ कॉल्स फॉर दाई इंटेग्रल हेल्प सो दैट व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड मे बी रियलाइज्ड. अब माँ इस एंड से कह रही हैं हम सबके लिए, सब तैयार है, सेना तैयार है प्रभु. इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आपने प्रॉमिस किया था ना, अब समय आ गया है, सेना तैयार है, अब आपकी सहायता चाहिए. और फिर सब कुछ हम देखते हैं कि 1914 और आज का आश्रम और काम श्री अरविंद का कोई कल्पना कर सकता था. हैंडफुल ऑफ लोग, 6-8-10 उस समय 1914, और माने पूरा प्रोग्राम, कुड एनीबडी वुड हैव इमेजिन्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ऑरोविल तो छोड़ दो, आश्रम में एक्सपेंड करेगा, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट रिजीम खत्म हो जाएगी, हम लोग रिक्लेम करेंगे, क्या क्या होगा. लेकिन शी हैज प्रेड फॉर हेल्प, इंटीग्रल हेल्प. अब हम मुड़ के देख सकते हैं, हाँ देखो माँ की प्रार्थना सुनी भगवान ने और ये सब बदला. कैसे बदला, उस समय तो कुछ भी नहीं था, मींस नहीं थे, खाने के मींस नहीं थे. आर्य का पब्लिश करने में ये समस्या आ रही थी कि सस्टेन कैसे करेंगे. श्री अरविंद कहते हैं कि इट मेड सम प्रॉफिट ओवर एंड अबव द रिक्वायरमेंट. कैसे इतनी सारी बुक्स निकलेंगी. श्री अरविंद ने तो कोई बाहर का प्रयास नहीं किया जैसे लोग करते, अरे मैंने किताब लिखी, इसको प्रिंट करना है, पब्लिशर ढूंढो, कुछ भी नहीं किया उन्होंने. कई बार मुझे आश्चर्य होता है, कभी कभी लोग पूछते हैं, उससे भी पूछते हैं, आपकी किताबें पब्लिश हुई कैसे होती, कहाँ होती. मैं कहता हूँ मुझे नहीं मालूम, मुझे तो खुद नहीं मालूम कैसे होता है क्या होता है. वो होती हैं, जब होना होता है तो होती हैं, मीन्स बन जाते हैं. बट कई लोग हैं जिनके अंदर ये छटपटाहट होती है. श्री अरविंद ने तो कुछ भी नहीं प्रयास किया और अपने आप लोग आए, जुड़े, सर वी शुड डू इट. ठीक है, आर्य पब्लिशिंग हाउस खुला, आर्य के लिए खुला था. फिर एक समय आया, कोई जल्दबाजी नहीं थी उनकी कि भाई हमने, मैंने देखो 6 साल में जो लिखा है वो मानवता के भविष्य के लिए अद्भुत अनुपम कृति है, जल्दी से कोई पब्लिशर ढूंढो, पैसे का अरेंज करो और पब्लिश कराओ. कुछ नहीं कहते हैं श्री अरविंद. कब पब्लिश होती हैं, देखो सम ऑफ दीज कृति, पहले छोटी छोटी बुक्स निकलती थी, बेसिस ऑफ योगा, लाइट्स ऑन योगा, दी मदर के लिए, दी मदर. कभी उन्होंने नहीं कहा अरे लाइव डिवाइन पड़ी हुई है, इसको पब्लिश करो प्लीज. 30s में पब्लिश होती है, फिर कब, करेक्शन के बाद. पथ दिखाया उन्होंने. माँ से किसी ने कहा आपकी पेंटिंग्स ल्यूब से हम लोग ले आए, माँ कहती माई चाइल्ड वी लिव इन इटर्निटी, द सन डज नॉट नीड एनी एडवर्टाइजमेंट. देखो देखो मेरी ओर, मैं सूरज हूं, प्रणाम करो. वो तो अपना काम करता है, प्रकाश देता है, जलता है खुद ताकि संसार में उजाला हो सके. इट जस्ट डज दैट, इट डजंट डू इट बिकॉज उसको मानव की कोई प्रशंसा या मानव के किसी उसकी आवश्यकता है, सेल्फ सफिशिएंट है. तो वे लोग जो कार्य करेंगे, हनुमान जी को देखिए ना कैसे, जब राम जी के समय में एबल हैं, एम्पावर्ड हैं, और एम्पावरमेंट ही उनको हर जगह बचाता है. जहां भी जाते हैं वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं मैं राम जी का दूत हूं। अभी ये कोई कहने, वो ये नहीं कहते जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैंने ये सीखा है वो सीखा है मेरी ये शक्ति, कुछ भी नहीं कहते, मैं राम जी ने भेजा है, समझ जाओ तो समझ जाओ। ऑन बिहाफ ऑफ द डिवाइन आई स्टैंड, ऑन बिहाफ ऑफ द डिवाइन आई गो, यही कहते हैं ना सुरसा को रावण को सब जगह यही कहते हैं, राम जी ने भेजा है, कितना सुंदर ढंग से कहते हैं, छोटे से क्यूट से बच्चे मतलब वो केवल वो एक उनकी पहचान नहीं है, वो वार्निंग भी है, राम जी ने भेजा है, डोंट मेस विद मी, मेरे पीछे कौन खड़े है मालूम है, राम खड़े हैं मेरे पीछे। ये होता है स्पॉन्टेनियस, माँ का बच्चा हूं, अब ये साधारण बात नहीं है, जिसके पीछे साक्षात जगत जननी खड़ी हो, तो ये भाव, ये सत्य और इंटीग्रल हेल्प के लिए माँ आह्वान करती हैं। ऑलरेडी सुप्रामेंटल ट्रुथ डिक्रीड है, यही शेरविंद कहते हैं, प्रॉमिस्ड है, लेकिन अब उसका समय आ गया, तब माँ उनकी सहायता का आह्वान करती है कि कालखंड की हम उस गति में पहुंच गए जहां पर अब आपकी सहायता चाहिए, वे लोग अब धरती पर आएंगे जिनका वर्णन सावित्री में हम देखते हैं, आई सॉ द ओमनीपोटेंट फ्लेमिंग पायोनियर्स कम क्राउडिंग डाउन द एम्बर स्टेयर्स ऑफ बर्थ। माँ ने कहा ये खासकर 60 के बाद ये बच्चे और अधिक आने लगे हैं, तो आने वाले समय में कैसे बच्चे होंगे पता नहीं, स्कूल तो जाएंगे नहीं मुझे तो ये लगता है, बोलेंगे टीचर को आप तो बेकार, आप जो पढ़ा रहे हो तो गूगल से ढूंढ लूंगा, आपको तो नया कुछ बता नहीं रहे हो, और टीचर बोलेंगे छड़ी लेकर के चुप करो बहस करता, कहते हम क्या करें, माता पिता की सुनेंगे नहीं, दे आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। माँ ने कहा था इन बच्चों को बड़ा करना बहुत कठिन होगा, खास बच्चे, सो दे विल बी एम्पावर्ड, देयर मस्ट टेक प्लेस इन अस द यूनियन ऑफ द टू विल्स एंड द टू करेंट्स सो दैट फ्रॉम देयर कॉन्टैक्ट में बी बॉर्न द इल्यूमिनेटिंग स्पार्क। टू करेंट्स कौन से हैं, एक जो ऊपर से आ रहा है शक्ति जो उतरना चाह रही है, एक नीचे से जो अभीप्सा रूप में भगवान की ओर मुड़ी है खुली हुई है, कि हे प्रभु आपका काम आप ही करोगे, हमारी सहायता करो ताकि आपके हम बस यंत्र बन सके, चैनल बन सके, कैसे करोगे क्या करोगे ये तो आप ही जानो, और यदि हम उनकी ओर मुड़ेंगे सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे, ये हमारी निज की अभीप्सा है, इसके अंदर कोई एम्बिशन नहीं होना चाहिए, कोई इगोइस्टिक नहीं, तो फिर, और ये सच्ची एस्पिरेशन आएगी तभी जब उसके लिए तैयार है वो इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट, तो ऊपर का करंट और नीचे से उठता हुआ करंट, श्री अरविंद का सिंबल, मैटर दैट कॉल्स फ्रॉम बिलो थ्रू लाइट लाइफ एंड लव एंड द डिवाइन दैट एंसर्स फ्रॉम अबव सच्चिदानंद, जहां ये दोनों मिलते हैं वहां न्यू क्रिएशन, सुप्रामेंटल न्यू क्रिएशन का जन्म होता है। श्री अरविंद के सिंबल को माँ कितने सुंदर ढंग से बता रही है, जहां दो करंट मिलते हैं, एक जो नीचे से उठ रहा है एक ऊपर से, और उनका जहां परफेक्ट मिलन होता है वहां पे हम स्क्वायर विच इज सुप्रामेंटल जल मैनिफेस्टेशन, न्यू मैनिफेस्टेशन, और उसके केंद्र में कौन है, अवतार, सो ब्यूटिफुल इट इज, एंड सिंस इट हैज टू बी डन इट विल बी डन। सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन इज मोर सर्टेन देन टुमारो सन, लेट मी पुट इट लाइक दैट, कल त्रितवी शुद्ध होगा कि नहीं होगा ये डाउट किया जा सकता है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा नहीं बनेगा ये डाउट किया जा सकता है, नहीं डाउट किया जा सकता, ओके आई नो, बट डाउट किया जा सकता है, लेकिन सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन होगा ये निश्चित है। क्यों, इसको किसने निश्चित किया है, स्वयं परमेश्वर ने। अक्सर लोग भारत के बारे में पूछते हैं, कहते हैं अभी तो ठीक है बाद में क्या होगा, तो मैं उनको स्मरण दिलाता हूँ, एक श्री अरविंद एक जगह कहते हैं और किसी के विजन में भी था, माता जी भी ये बात कहती हैं, माता जी श्री अरविंद के बारे में कहती हैं, श्री अरविंद माता जी के बारे में, माता जी के बारे में वो कहते हैं मच लेटर इन टू आई थिंक यशादी का विजन है, कि नाउ श्री अरविंदो एंड द मदर हैव टेकन इंडियाज डेस्टिनी इन देयर हैंड्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ लोग कह रहे थे कुछ दिन पहले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आया, कुछ दिन मुझसे पूछ रहे थे अखंड भारत ये वो, ने कहा अभी देखते जाओ। अभी दो दिन पहले हाईकोर्ट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफिडेविट में कहती है पीओके तो हमारा है ही नहीं। ये न्यूज किसी ने देखी है? नहीं देखी। दिस गेव एन एफिडेविट इन देयर हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट ने बोला है कोविड कहते हैं क्या कह रहे हो तुम लोग, पीओके तुम्हारा नहीं है तो तुम इसको अब तक कहते हमारा है ही नहीं। तो क्योंकि उनका क्वेश्चन था कि इसको रन करने कहते हमारा है ही नहीं। अब देखिए आप कहते ना सबके जवान पर सरस्वती बैठ गई है और सबके खेल एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लोग ऐसी ऐसी झूठ बोलने में भी ऐसे कर रहे हैं कि जिसको कहते हैं जो सबको दिखाई दे रहा है कि ये महाझूठ है। आप एक्सपोज हो गए और कुछ नहीं तो अपनी इज्जत रखने के लिए आप मत बोलो, लेकिन बोल रहे हैं लोग क्योंकि दिस इज हाउ द सुप्रमेंटल एक्शन इज टेकिंग प्लेस। और जो चीज भगवान के हाथ में, इसीलिए आश्रम का भविष्य सबसे पहले श्रीमान श्री अरविंद से जुड़े उन सब स्थानों का जहां उन्होंने अलख जगाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एम्बिशन में किसी ने सेंटर स्टार्ट कर दो ये कर दो, वो मैं नहीं कह रहा हूं, बिकॉज मेनी थिंग्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ दैट। फिर भारत का भविष्य क्योंकि वो केंद्र होना है इस न्यू क्रिएशन का, और पृथ्वी का भविष्य ये सब श्री अरविंद श्री माता जी ने सुरक्षित कर दिया है। हमको उस बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इट मीन्स वी डाउट। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि भगवान यदि आपको उपयुक्त लगे, हमारे अंदर ये अभीपसा उठ रही है ना जाने क्यों, और यदि जिस भी रूप में आप हमको प्रस्तुत हैं हम आपका कार्य करने के लिए, कैसे ये आपके ऊपर है। कौन सा कार्य, छोटी सी कहानी जिसके साथ रुकेंगे। दुर्वासा ऋषि आए थे गोवर्धन पर्वत पे, बीबीसी न्यूज ने नई रिपोर्ट किया था, और उनसे सबके मन में एक ही प्रश्न था कंस कब मरोगे, मरोगो क्या बोलते हैं उसमें ब्रिज भाषा में, कंस कब मरेगा, उसका राज्य कब अंत होगा। तो वहाँ छोटे कृष्ण जी भी हैं, दुर्वासा ऋषि उनको देख के आँख आँख में पूछते हैं बोल दूँ भंडा फोड़ दूँ तुम्हारा। कृष्ण कहते हैं जो बोल रहे हैं बोल दो, समझेंगे वही जो मैं समझाना चाहूँगा। शेरविंद कहते हैं अलीपुर जेल में देयर अंडरस्टैंडिंग इज इन माई हैंड्स। तो कह देते हैं जब एक छोटा बच्चा इस गोवर्धन पर्वत को उठा लेगा समझना कंस का राज अंत हो गया। तो अब उसको इंटरप्रेट करते हैं, तीन स्कूल्स ऑफ थॉट निकलते हैं। एक होते हैं मेटीरियलिस्ट, कहते हैं मतलब कभी अंत नहीं होगा, छोटा बच्चा कभी उठा सकता है इम्पॉसिबल चीज, मेटीरियलिस्ट। दूसरे रिलीजनिस्ट, यहाँ नहीं होगा स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, स्वर्ग में कोई नियम धरती का लागू नहीं होता है। तीसरे ग्रुप कहता है मामा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, दूध मलाई खाऊंगा, खूब एक्सरसाइज करूंगा। क्यों बेटा, वो कहा था ना क्या पता मैं वो बच्चा हूं जो पर्वत उठाऊंगा। ये है श्री अरविंद के डिवोटीज। अब श्री कृष्ण तो उठाएंगे, वो साथ में इनको भी कह देते आ जाओ तुम भी, तुमने तो ये मम्मी से बोला था स्कूल नहीं जा रहे थे, सब छोड़ छाड़ के आ गए थे, चलो तुम भी लाठी लगा लो, तुमको भी थोड़ा एक साथ मिल के हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी है, ना इंद्र के कोप का ना कंस के कोप का। हमको केवल ये करना है, माँ नई सृष्टि तो आएगी ही, भगवान की प्रॉमिस है, डिवाइन मदर ने इसको एश्योर कर दिया है, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। जो भी आपको लगता है उपयोग में ये काम हो सकता है, आप हमारा से हमसे काम ले लो, लेकिन एक चीज होगी, ये लोग मोक्षवादी नहीं होंगे, उस तरह की पलायनवादी नहीं होंगे, केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे। ये माता जी कहती हैं देयर हार्ट्स विच एक्सटेंड बियॉन्ड द फैमिलीज, क्योंकि उनके हृदय में विश्व के प्रति प्रेम होगा और भगवान के प्रेम से वो प्रेम अप्लावित होगा। लास्ट थ्री लाइन्स, There must take place in us the union of the two wills and the two currents, human will and the divine will, human aspiration and the divine grace, so that from their contact may be born the illuminating spark, नई स्पार्क ऑफ द न्यू क्रिएशन जो आग लगाएगी और नई चीजें बनाएगी. एंड सिंस इट हैज टू बी डन इट विल बी डन. 6 माह.